प्रवचन तीन, अपने चित्त को कर्म स्थान पर टिकाए रखिए। वेबुसयादा ने कहा, आप शील का पालन करने लगे हैं। शील में प्रशिक्षण लेने के पश्चात इसका अभ्यास इसकी चरम सीमा तक करते रहिए। वे आकांक्षाएं जो आपने अपने हृदय में सजोई हैं केवल तभी पूरी तरह से परिपूर्ण होंगी जब आप वास्तव में नैतिकता का अभ्यास करेंगे। एक बार जब आप नैतिक आचरण में स्थापित हो जाते हैं तो जो भी कुशल कार्य आप करेंगे उनका परिणाम आपकी महान आकांक्षाओं की पूर्ति में होगा। दान देने से आपके लिए लाभ संचित होता है, इसमें आप विश्वास करते हैं तथा आप आपके उपहार को ग्रहण करने वाले का सम्मान करते हैं। अतः अपने मन को सीधा करें तथा धम्म में दें जो अद्वितीय है। इस प्रयोजन के लिए अन्य लोगों को नियुक्त किए बिना अपने दान को स्वयं तैयार करें तथा उन्हें अच्छी तरह तैयार करें। अपना उपहार देते समय इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्यो होतु, अर्थात निर्वाण प्राप्त करना मेरी अभिलाषा है, यह कहते हुए जागृति आपकी आकांक्षा होनी चाहिए। वे आर्यजन जिन्होंने अपनी आकांक्षा के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया इतने बहुसंख्यक हैं कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। चार आर्य सत्य में मर्मज्ञ होने के बाद जिस वास्तविकता का स्वयं आत्मसात होता है उसे बोधि कहते हैं। बोधि विभिन्न प्रकार की होती है। सम्मा संबोधि अर्थात एक प्रशिक्षक बुद्ध का स्वयं सर्वोच्च जागरण। प्रत्येक बोधि पाली में पच्येक बोधि अर्थात प्रशिक्षण न देने वाले बुद्ध का स्वयं जागरण। तथा श्रावक बोधि पाली में सावक बोधि अर्थात किसी प्रशिक्षक बुद्ध के शिष्य का जागरण। सावक बोधि को तीन स्तरों में बांटा गया है। अग्र श्रावक बोधि पाली में अग्र सावक बोधि अर्थात दो प्रमुख शिष्यों द्वारा उपार्जित। महासावक बोधि अर्थात 80 महान शिष्यों द्वारा उपार्जित। तथा प्रकृति श्रावक बोधि पाली में पकति श्रावक बोधि अर्थात अन्य सभी अरहतों द्वारा उपार्जित। हम सभी को उच्चतम अनुग्रह निर्वाण की कामना करना है। आप अपनी निर्वाण की आकांक्षा को क्यों इस समय परिपूर्ण कर सकते हैं? क्योंकि यह समय सही है, क्योंकि आपके अस्तित्व का रूप सही है तथा इस तथ्य के कारण कि सभी प्रयास करने वाले पुण्यवान व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हम यहाँ बता दें कि अस्तित्व के 31 लोकों में से केवल कुछ में ही धम्म अर्थात बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास किया जा सकता है। मानव लोक के नीचे के लोकों में अर्थात अपाय लोकों में से नरक के प्राणी इतनी प्रचंड पीड़ा भोगते हैं कि वे इस शिक्षा का अभ्यास नहीं कर सकते, यहाँ तक कि नैतिकता का भी नहीं कर सकते। तिरच्छन या जानवर लोक के प्राणियों में इन शिक्षाओं को समझने के लिए आवश्यक बुद्धि नहीं होती, जबकि कुछ उच्चतम ब्रह्म लोकों का निम्न लोकों से कोई संपर्क असंभव है तथा इस कारण वहाँ इन शिक्षाओं को प्राप्त करना असंभव है। बुद्ध सदैव मानव लोक में ही उदय होते हैं। आदरणीय सयादा ने आगे कहा, उचित समय वह होता है जब कोई बुद्ध उदय होते हैं तथा समय का वह कालखंड होता है जब तक उनकी शिक्षा उपलब्ध होती है। वे सभी लोग जो मनुष्य लोक में या किसी दैवी लोक में उत्पन्न हुए हैं उन सभी का जन्म उचित जन्म कहलाता है। अब आपको अपने स्वयं के प्रयास से अपनी आकांक्षाओं को परिपूर्ण करना है। यह देखना है कि आप अपने काम को एक निष्कर्ष तक ले जाएं, जैसा कि आपसे पूर्व अनेक लोगों ने किया है। जब वे अपने लक्ष्य को पहुंच गए तो वे वास्तव में आनंदित हुए, न केवल अल्प समय के लिए या एक जन्म के लिए, अपितु शेष सभी जन्मों के लिए। हम यहाँ बता दें कि आर्य, पाली में अरिय, वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने निर्वाण का अनुभव कर लिया होता है, जिन्हें सभी दुखों के अंत तक पहुँचने के लिए केवल एक सीमित संख्या के ही जन्म लेने होते हैं। इस पुस्तक में प्रवचनों में प्रयुक्त पाली पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत इस विषय पर भी चर्चा की गई है। आदरणीय सियादा ने आगे कहा, अब जबकि आप निर्वाण की आकांक्षा करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते अथवा कि आप ऐसा उच्च संकल्प पूरा नहीं कर सकते। आप उस मात्रा में ऊर्जा एवं प्रयास स्थापित कीजिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह सही समय पर आप अपने संकल्प को आत्मसात करेंगे। जो काम करना है जब आप उसे पूरा कर लेंगे तो आपको क्या लगेगा? बुद्ध के समय मनुष्य, देवता तथा ब्रह्मा उनको नमन करने गए, किंतु कोई भी मनुष्य, देवता या ब्रह्मलोक के प्राणी अपने आप को केवल बुद्ध की उपस्थिति में पाकर तथा उनका समादर कर संतुष्ट नहीं हुआ था। अतः बुद्ध ने जो कुछ भी शोध किया था और स्वयं समझा था, उसे अपनी करुणा के कारण वे उन्हें सिखाना चाहते थे। उनके इस ज्ञान संचार को हम उपदेश कहते हैं। जब बुद्ध उपदेश देते थे तो एक सेकंड के एक अंश में ही अनेक मनुष्य, देवता तथा ब्रह्मलोक के प्राणी अपने संकल्प को पूरा कर लेते थे। यह जानते हुए कि यही सही समय है तथा हम सही अस्तित्व में हैं, हमें जागरूकता की स्थापना करनी चाहिए, जैसा कि हमसे पूर्व समझदार लोगों ने किया था, तथा इस प्रकार हम अपने संकल्प की पूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं? भिक्षुओं तथा बुद्धिमान लोगों ने अपनी अपार करुणा से बुद्ध की शिक्षाओं को आप तक पारित किया है। जब आपको निर्देश दिए गए तो प्रत्येक बार आपने अपनी समझने की क्षमता के अनुसार इसमें से कुछ समझा। आप जानते हैं कि ये शिक्षाएं तीन मंजूषाओं अर्थात त्रिपिटक में प्रतिष्ठापित हैं। यह सुत्तांत पिटक से है, यह विनय पिटक से है, यह अभिधम्म पिटक से है, ऐसा आप जानते हैं। आप सभी शिक्षाओं के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। ये पवित्र ग्रंथ अत्यंत व्यापक हैं। यद्यपि विद्वान व्यक्ति बिना किसी व्यवधान के इन ग्रंथों का पठन पाठन, अध्ययन एवं शिक्षण करते रहते हैं, तथापि वे अत्यंत व्यापक हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए उन सब का अध्ययन कर पाना तथा पूर्ण रूपेण समझ पाना अत्यंत कठिन है। किसी एक व्यक्ति के लिए इन संपूर्ण ग्रंथों में पारंगत हो पाना असंभव है, क्योंकि इनमें बुद्ध की सभी शिक्षा निहित है। वे संपूर्ण हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध ने जो कुछ भी स्वयं पता लगाया तथा समझा था, उसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिपिटक में निहित शिक्षा ही दुख से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है, तथा इन्हें स्वयं समझकर भिक्षु अपनी करुणा से बारंबार आपको इंगित करते रहते हैं। किंतु क्या विद्वान लोग सभी पवित्र ग्रंथों की आपके लिए इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं कि कोई एक भी पहलू छूटने न पाए। एक शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं भंते, यह असंभव है। सयाजा ने पूछा, आर्यजनों की सभी शिक्षा की व्याख्या करने में कितना समय लगेगा? आपको कितने दिनों तक बैठना और बोलना पड़ेगा जिससे कि याद की गई आर्यजनों की सभी शिक्षा को समाविष्ट किया जा सके? इन सभी शिक्षणों का प्रयोजन दुख का अंत करने के लिए मार्गदर्शन कराना है। आप बुद्ध की शिक्षा को पर्याप्त मात्रा में जानते हैं। इन सभी बहुमुखी पहलुओं वाली शिक्षा में से आपको कोई एक पहलू लेकर उसका दृढ़ता के साथ अध्ययन करना है। यदि आप एक ही विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जैसा कि प्राचीन काल के बुद्धिमान व्यक्ति करते थे, तो क्या वह उस विषय पर स्थिर नहीं रहता? रहता है बनते। तो बुद्ध द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों में से किसी एक निर्देश का चयन कीजिए तथा सदैव जागरूक रहकर उस पर काम कीजिए। अतीत में बुद्ध के शिष्यों ने जितने प्रयास एवं दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किया था, वैसे ही कीजिए। यदि आप किसी एक ही विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो वह इच्छानुकूल वस्तुओं की ओर भटकने की अपनी आदत छोड़ देगा। जब आप इस प्रकार एक ही लक्ष्य पर अपने मन को स्थिर रखने में सक्षम हो जाते हैं, तो क्या तब भी लोभ रह सकता है, जो कि दुख का कारण है? जब मन स्थिर हो जाता है, तब कोई लोभ नहीं रहता बनते। क्या घृणा रहती है? नहीं बनते। क्या भ्रांति रह सकती है? नहीं बनते। यदि रुचि अरुचि तथा भ्रांति नहीं रहती, तो क्या भय चिंता एवं व्याकुलता हो सकती है? नहीं बनते। यदि कोई भय चिंता एवं व्याकुलता न हो, तो क्या आप आनंदित होंगे या दुखी? आनंद होगा बनते। यदि आप बुद्ध द्वारा दी गई ध्यान की किसी विषय वस्तु अर्थात आलंबन का चयन करते हैं तथा प्रबल प्रयास के साथ उसकी साधना करते हैं, तो क्या वीर्य रिद्धिपाद, पाली में वीर्य इद्धिपाद घटक उदित होने में संकोच करेगा? यहाँ हम बता दें कि इद्धिपाद या रिद्धिपाद का अर्थ है संपूर्णता या परिपूर्णता प्राप्त करने का मूल या आधार। वीर्य या वीर्य का अर्थ है प्रबल प्रयास। वीर्यवान व्यक्ति इस विचार से संचारित होता है कि लक्ष्य को ऊर्जा एवं प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि उससे कहा जाता है कि उसे महान कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, तथापि वह हतोत्साहित नहीं होता। यद्यपि उसे वास्तव में महान कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, फिर भी वह हतोत्साहित नहीं होता। भले ही उससे कहा जाता है कि उसे कई दिनों महीनों एवं वर्षों तक प्रयास करना होगा, फिर भी वह हतोत्साहित नहीं होता। भले ही उसे वास्तव में इतनी लंबी अवधि के लिए प्रयास करते रहना पड़े, फिर भी वह हतोत्साहित नहीं होता। इस विषय में और जानकारी के लिए इसे लेडी सयाजा के द मैनुअल्स ऑफ बुद्धिज्म में पृष्ठ 190 पर देख सकते हैं। तो शिष्य ने उत्तर दिया, वह उदित होने में असफल नहीं होगा बनते। सयाजा बोले, जैसे ही आप अपने आप को प्रयास में स्थापित करते हैं, वीर्य इद्धिपाद कारक उदय होगा। किंतु हम शिक्षा के विषय में वार्तालाप करने में निपुण हैं, उसके स्थान पर आइए हम तत्काल प्रयास करें, वीर्य इद्धिपाद कारक अविलंब उदय होगा। यही अकालिको कहलाता है, अर्थात यही इसी समय तात्कालिक परिणाम। यह इसलिए नहीं उदय होता कि हम इसके बारे में सोचते या जानते हैं, अपितु केवल इसलिए कि हम अभ्यास करते हैं। तो फिर आप अपना समूचा ध्यान ऊपरी होंठ के ऊपर नाक के नीचे के स्थान पर केंद्रित कीजिए। अपने आश्वास एवं अपने प्रश्वास का अनुभव कीजिए तथा यह अनुभव कीजिए कि कैसे वे नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर के स्थान को स्पर्श करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा निर्देश समाप्त होने के पहले ही आपने अपना ध्यान उस स्थान पर केंद्रित कर लिया था। मुझे नहीं लगता कि सभी लोग ऐसा करने में सक्षम हुए थे बनते। अच्छा, तो मैंने जो कहा वह सबकी समझ में आ गया? कुछ लोगों को अभी यह नहीं पता कि उन्हें कैसे अभ्यास करना है बनते। ओह मेरे प्रिय मित्र, आप सभी ने अतीत में बहुत कुछ सीखा है। भिक्षुओं ने अपनी महान करुणा के साथ आपको बारंबार शिक्षा दी है तथा आपने बुद्धिमत्ता के साथ उनके निर्देशों को समझ लिया है। जब मैंने आपसे दृढ़ संकल्प के साथ कर्मस्थान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तथा मन को न भटकने देने के लिए कहा तो आपने बताया था कि वह श्वास पर टिक गया था। आपने नहीं कहा था क्या? जिन लोगों ने अपना ध्यान कर्मस्थान पर केंद्रित किया था उन लोगों ने उत्तर दिया था वह टिक गया है बनते। किंतु दर्शकों में से ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने धम्म के विषय में पहले कभी नहीं सुना है। क्या मैंने कुछ भी ऐसा कहा जो आपने पहले न सुना हो? आप सभी महान गृहस्थ शिष्य हैं और कई बार आए हैं। आप सभी स्वयं धम्मोपदेश देने में सक्षम हैं। बिल्कुल नहीं बनते, कुछ लोगों को तो अभी कुछ भी नहीं पता है। इन्होंने अभी जो कहा क्या अन्य लोग उससे सहमत है? बनते, मैं वहाँ उन लोगों के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके विषय में मुझे ज्ञात नहीं है। मैंने आपको जो कुछ भी बताया है उसका मैंने स्वयं पता नहीं लगाया है। बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं मैं तो उसे आपके समक्ष केवल दोहरा रहा हूँ। बुद्ध ने जो बताया है वह बिना किसी अपवाद के संपूर्ण है, सही है। मैं जो उपदेश देता हूँ वह संपूर्ण नहीं है। बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उनमें सब कुछ समाहित है, उनके शिक्षण में कोई कमी नहीं है। किंतु मैं जो संप्रेषित करने में सक्षम हूँ उनमें अनेक पहलुओं की कमी हो सकती है। क्या मैं सभी शिक्षा को पूर्ण रूपेण आपको देने में सक्षम हो सकता हूँ? नहीं बनते, आप हमें सब कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, सूत्र क्या है, विनय क्या है तथा अभिधम्म क्या है, आप यह सब समझते हैं। चूंकि आपके शिक्षकों ने अपनी महान करुणा के कारण आपको निर्देश दिए हैं अतः आप समथ, पाली में समथ, एवं विपस्सना, पाली में विपस्सना का संक्षिप्त तथा व्यापक स्पष्टीकरण भी समझते हैं। यहाँ हम बता दें कि समथ शब्द समाधि का एक पर्याय है। तो उन्होंने आगे कहा, किंतु चाहे आप यह सब जानते हो या नहीं, आप सभी बड़े और छोटे पुरुष एवं महिलाएं श्वास लेते हैं। हो सकता है कि कोई पाली ग्रंथों के विषय में सब कुछ जानता हो किंतु अपनी ही श्वास के बारे में कुछ भी न जानता हो। क्या आप सब श्वास लेते और छोड़ते नहीं हैं? हम अवश्य श्वास लेते हैं मनते। आप आश्वास एवं प्रश्वास का प्रारंभ करते हैं जब हम जन्म लेते हैं बनते। जब आप बैठे होते हैं तब क्या आपकी श्वास चलती रहती है? हाँ बनते। जब आप सीधे खड़े होते हैं तब क्या आपकी श्वास चलती रहती है? हाँ बनते। जब आप चल रहे होते हैं हम तब भी श्वास लेते और छोड़ते हैं बनते। जब आप खाते पीते और अपनी जीविका के लिए काम कर रहे होते हैं क्या तब आप श्वास लेते हैं? हाँ बनते। जब आप सोने जाते हैं तब क्या आप श्वास लेते हैं? जी हाँ बनते। क्या कभी ऐसा भी समय होता है जब आप इतने व्यस्त हों कि आपको कहना पड़े खेद है मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास श्वास लेने के लिए भी समय नहीं है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो श्वास के बिना जी सके बनते। इसका अर्थ है कि आप सब में यह सामर्थ्य है कि श्वास लें और छोड़ें। जब आप श्वास लेते हैं यदि आप बारीकी से ध्यान दें तो जहां श्वास का स्पर्श होता है, क्या आप उसका अनुभव कर सकते हैं? जब वह नासिका रंध्रों से बाहर निकलती है तो जहां हवा का स्पर्श होता है, क्या आप उसका अनुभव कर सकते हैं? जहां वायु का स्पर्श होता है, मैं उसका अनुभव कर सकता हूं, भंते। तथा जब वायु प्रवेश करती है तो जिस बिंदु को वायु का यह क्षीण प्रवाह स्पर्श करता है, क्या उसका अनुभव आप नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूं, भंते। अच्छा, स्वयं यह पता लगाने का प्रयास करें कि जब हवा अंदर जाती है तथा जब वह बाहर आती है तो किस स्थान पर उसका हल्का सा स्पर्श होता है, वह स्पर्श कहाँ होता है। जब वह प्रवेश करती है तो नासिका रंध्रों के प्रवेश द्वार पर एक छोटे से स्थान पर स्पर्श करती है, भंते। जब हवा बाहर जाती है तब भी क्या वहाँ स्पर्श करती है? हाँ भंते, जब वह बाहर जाती है तो उसी स्थान पर स्पर्श करती है, जैसा कि बुद्ध ने उन्हें निर्देश दिया। अतीत के समझदार लोगों ने श्वास की इस जागरूकता का अभ्यास किया तथा चूंकि उन्होंने इस शिक्षा को पारित किया, आप भी इसे समझ गए। यदि आप नाक के नीचे उस छोटे से स्थान पर अपनी उंगली रखें तो क्या आप उस स्थान को अनुभव कर सकते हैं? हाँ भंते, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। जब आप इसे स्पर्श करते हैं तो इसे वास्तव में महसूस कर सकते हैं, तो क्या अब भी इसके बारे में आपको विचार विमर्श करना चाहिए? नहीं भंते, हम इसके बारे में बातचीत किए बिना ही इसे महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार जब आप अपनी उंगली से छूते हैं तो उस स्थान को महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार जब श्वास नाक में प्रवेश करते समय या बाहर जाते समय वहाँ छूती है तो भी आप उसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप स्वयं इसे महसूस कर सकते हैं तो क्या आपको अभी भी इसके बारे में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है? नहीं बनते, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप उस स्थान पर अपनी उंगली रखें तो क्या आप स्पर्श का अनुभव लगातार करते हैं या रुक रुक कर वह स्पर्श बना रहता है? भंते, क्या हवा के आने या जाने का प्रवाह कभी बाधित होता है? नहीं भंते, जैसे कि वायु अंदर व बाहर की ओर प्रवाहित होती है, हम इसका सतत प्रवाह जानते हैं तथा इससे उत्पन्न निरंतर स्पर्श को। वायु का अनुसरण उस पार तक मत कीजिए। तो शिष्य ने पूछा, इससे आपका क्या अर्थ है भंते? सयादा ने बताया कि त्वचा से श्वास के स्पर्श की संवेदना की अनुभूति को जाने मत दीजिए, स्पर्श की जानकारी के साथ बने रहिए। वायु के प्रवाह का भीतर या बाहर अनुसरण मत कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्पर्श की संवेदना का अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे। तो आइए हम बिना किसी अंतराल के कर्मस्थान की जानकारी बनाए रखें। शिष्य ने आगे पूछा, क्या हमें वायु के स्पर्श की जानकारी दोनों नासिका रंध्रों में रखनी चाहिए या मात्र एक में ही? केवल एक ही का अनुभव कीजिए। यदि आप दो स्थानों पर अनुभव करने का प्रयास करते हैं तो आपका ध्यान विभाजित हो जाएगा। अपना अविभाजित ध्यान एक ही स्थान पर रखिए। क्या आपका मन उस स्थान पर टिका रहता है? अधिकांश समय तक रहता है भंते, किंतु सदैव नहीं। अधिकांश समय तक रहता है किंतु कभी कभी खांसने की आवाज से निरंतरता खंडित हो जाती है। क्या आपकी स्वयं की खांसी से या किसी अन्य की? किसी और की खांसी से भंते। आपको क्या यह इसलिए अशांत करता है कि आप बहुत कम प्रयास कर रहे हैं या इसलिए कि बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं? क्या खांसने वाले को इसमें दोषी ठहराना चाहिए? भंते, सच कहें तो मुझे थोड़ा क्रोध आ जाता है। आइए हम इस पर दृष्टिपात करते हैं। आप दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध के पास आए हैं, उनकी शिक्षा प्राप्त कर आप अभ्यास प्रारंभ करते हैं, तब कोई खांसता है और आप अशांत हो जाते हैं। किंतु यदि आप ध्यान लगाते हैं, जैसा कि आप इस समय कर रहे हैं, तो लोग निस्संदेह आपको एक अच्छा व्यक्ति समझेंगे तथा आपकी प्रशंसा करेंगे। किंतु मुझे बताइए कि यदि यह अच्छा व्यक्ति मृत्यु से ठीक पहले क्रोधित हो जाता है, तो उसका पुनर्जन्म कहाँ होगा? उसका चार अपाय लोकों में पतन होगा बनते। हाँ, आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आपको अधीर और चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। आप दुख से मुक्ति के लिए साधना कर रहे हैं। आपको इस खांसी की आवाज़ सुनकर अतीव प्रसन्न होना चाहिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए। आखिरकार जो व्यक्ति खांस रहा है, वह यह दर्शाता है कि आपका प्रयास पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं है। यदि आप दुख से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको इससे बेहतर करना होगा। इस प्रकार के प्रयास से आप सफल नहीं होंगे। हमें तत्काल और अधिक प्रयास करना चाहिए। यदि हम और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं, तो क्या हमें फिर भी खांसी सुनाई देगी? नहीं बनते, अच्छा प्रयास करने पर नहीं। तथा यदि बहुत से लोग हों और सभी जोर जोर से बात कर रहे हों, तो क्या फिर भी हम उन्हें सुन पाएंगे? यदि हमारा प्रयास सही प्रकार का नहीं है, तो हम सुनेंगे बनते? यदि हम उन्हें सुनते हैं, तो क्या हमें उन पर क्रोधित होना चाहिए? मैं प्रायः क्रोधित हो ही जाता हूं बनते। आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आपको आशुकोपी चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि जो आपको अशांत कर रहे हैं, वे आपके मित्र हैं। आपको स्वयं से यह कहना चाहिए कि वे मेरे कल्याण से संबंधित हैं, मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सब लोग यह जानें कि मेरा प्रयास इतना दुर्बल है। मैं ध्यान लगाऊंगा और अपने आप को सुधारूंगा। तथा यदि वे और जोर से बात करना प्रारंभ करते हैं, तो मैं और भी अधिक प्रयास करूंगा। यदि हम अपने आप में तब तक सुधार करें जब तक हमारा प्रयास उन महान व्यक्तियों के प्रयास के बराबर न हो जाए जिन्होंने हमसे पूर्व साधना की है, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसका हमने संकल्प किया है। यदि आप कोई आवाज बिल्कुल ही नहीं सुनते, तो यह सोचकर कि आपका प्रयास एकदम सही है, आप गर्वान्वित हो उठते हैं। इसीलिए यदि हमें कोई परेशान करता है, तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए। यदि हम किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, तो फिर वहाँ भी उपद्रव हो सकते हैं। यदि हम स्थान परिवर्तित करते रहें, तो हम केवल समय व्यर्थ करते हैं। किंतु यदि हम अपनी सती अर्थात जागरूकता या ध्यान को दृढ़ता से स्थापित कर लें, तो क्या फिर हमें स्थान परिवर्तन करने की या दूसरों से शिकायत करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं बनते। जो हमें परेशान करते हैं, क्या यह उचित नहीं कि हम उन्हें धन्यवाद दें? वे हमारी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण पाना सीखने में हमारी सहायता करते हैं, तथा हमें उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारे मित्र हैं। यदि हमारा प्रयास इतना सशक्त हो जाता है जितना कि हमारे शिक्षकों का है, तो हमें तब और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगा। हमारा संज्ञान केवल एक ही बात का होगा, यह छोटा सा स्थान तथा स्पर्श की संवेदना। एक बार जब हमें इस बात की अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो हम अपना ध्यान पूरी तरह से इस जानकारी में लगा देंगे। इस अभ्यास के माध्यम से जिस आनंद की हम आकांक्षा करते हैं, यदि हम उसे पा लें, तो क्या तीनों पिटकों की सामग्री, 10 पारमी, त्रिगुण प्रशिक्षण, 5 स्कंध, ज्ञानेन्द्रियां तथा प्रतीत एवं परम सत्य, सब कुछ इसी जागरूकता में समाहित नहीं मिलेंगे? हाँ बनते। इस स्पर्श संवेदना की जागरूकता में जो कुछ भी बुद्ध ने सिखाया है, वह निहित है। आप तीनों पिटक चार आर्य सत्य मन एवं पदार्थ तथा अन्य तकनीकी शब्दों के विषय में बात करते रहते हैं, किंतु क्या आप वास्तव में यह जानते हैं कि मन एवं पदार्थ के बीच कैसे भेद करना चाहिए? यह आपकी नाक के नीचे का छोटा सा स्थान क्या मन है अथवा पदार्थ? यह पदार्थ है बंते। तथा उस स्थान की जानकारी क्या है? वह मन है बंते। तथा यदि आप अपनी नाक के नीचे के स्थान को इतने स्पष्ट रूप से अनुभव करें जितने स्पष्ट रूप से उसे अपनी उंगली से स्पर्श करते समय अनुभव करते हैं, तो तब हम मन एवं पदार्थ दोनों को जानते हैं बंते। तो मन एवं पदार्थ दोनों को एक साथ जानना अच्छा है या बुरा? यह अच्छा है बंते। क्या यह ज्ञान कहलाता है अथवा अज्ञान? यह ज्ञान है बंते। तथा यदि हम में यह जागरूकता न हो तो क्या? तब हम अज्ञानता में रहते हैं बंते। कौन अधिक शक्तिशाली है, ज्ञान या अज्ञान? ज्ञान में अधिक शक्ति है बंते। हाँ, यह ज्ञान या समझ ही है जिसमें शक्ति होती है। जन्म और मृत्यु का संपूर्ण चक्र अज्ञान से भरा हुआ है, किंतु जब आपने बुद्ध की शिक्षा प्राप्त कर ली है जागरूक हो जाइए। कुशल व्यक्ति जागरूकता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं तथा अपना ध्यान केवल यहाँ रखते हैं। जैसे वे जागरूकता प्राप्त करते हैं उनमें ज्ञान आता है। जब आप इस प्रकार जागरूक होते हैं तो अज्ञानता का क्या होता है? वह निकलकर लुप्त हो जाती है भंते। यदि हम उसे ढूंढें तो उसे कहाँ पाएंगे? वह चली गई भंते। यद्यपि अतीत संसार अर्थात भवचक्र में आपके ऊपर अज्ञान इतना अधिक शक्तिमान रहा है, किंतु जब आप बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा प्रज्ञा उदय होती है तथा आपको इसका भी पता नहीं होता कि आपका अज्ञान कहाँ चला गया, तो वास्तव में अज्ञान की तुलना में ज्ञान में बहुत अधिक शक्ति है। और फिर भी आप शिकायत करते हैं कि आपके मस्तिष्क पर अज्ञानता की बड़ी मजबूत पकड़ है। किंतु भंते, अज्ञानता के साथ हम इतने लंबे समय तक संबद्ध रहे हैं कि इसका त्याग करने के अनिच्छुक हैं। फिर भी यदि आप बुद्ध की शिक्षा का पालन करें तो अज्ञानता लुप्त हो जाएगी। आपके लिए इन दोनों में से कौन अधिक स्वीकार्य है? भंते, हमारे लिए अज्ञानता कुछ अधिक प्रिय है। क्या आप ज्ञान की मनोदशा को बनाए रखना चाहेंगे? हाँ भंते, किंतु हम अज्ञानता को छोड़ नहीं सकते। क्या अज्ञानता बलपूर्वक आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है? भंते, हम इसे अपने मस्तिष्क में बलपूर्वक बुलाते हैं। आप सब शिक्षित हैं और आप बुद्ध की शिक्षा के विषय में अनेक बातें जानते हैं तथा आप उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं एवं आप उनका अभ्यास करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं तथा अपनी जागरूकता को सदैव बनाए रखते हैं, किंतु मुझे बताइए कि ध्यान लगाने के लिए आपको कौन कौन सी तैयारियां करनी होती हैं? हमें एक गद्दी या कुशन तथा लेटने के लिए चटाई लेनी होती है बंते। यदि आपके पास ये सारी सामग्रियां हों तो क्या आपका ध्यान अवश्य अच्छा लगेगा? हमें अन्य लोगों से दूर रहने की भी आवश्यकता पड़ेगी भंते। यदि आप सतर्क न हो तो क्या होता है? हमें नींद आ जाती है भंते। आप सब बुद्ध के शिष्य हैं, आप जानते हैं कि अज्ञानता आपकी शत्रु है तथा यद्यपि आप यह जानते हैं, आप ध्यान लगाना तभी प्रारंभ करते हैं जब आपने स्वयं के लिए एक बिस्तर लगा लिया हो। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद आप ऊब जाएंगे तथा आलस्य एवं अकर्मण्यता आ जाएगी, तब आप क्या करेंगे? हम उसे सहन करेंगे। भंते, यदि आलस्य एवं तंद्रा अत्यधिक प्रबल हों तो क्या तब भी आप विरोध करेंगे? नहीं भंते, हम उनसे कहेंगे अब आ जाओ। हाँ, ऐसे ही आप हैं, अब आ जाओ, मैंने बड़ी देर से बिस्तर लगा रखा है, यही आप सोचने वाले हैं, है ना? हाँ भंते, सोने के बाद फिर आप कब उठेंगे? जब दिन चढ़ जाए तथा जलपान का समय हो जाए तब हम उठेंगे। भंते, आपकी इस प्रकार की बात का प्रभाव यह होगा कि अज्ञानता का संकट कभी दूर नहीं होगा। आप समझ और ज्ञान की नहीं अपितु अज्ञानता की प्रशंसा करते हैं। यदि आप इसी प्रकार काम करते रहे तो क्या आपको कभी भी वह आनंद प्राप्त होगा जिसके आप आकांक्षी हैं? नहीं बनते, तो आप केवल काम करने का ढोंग करेंगे। यदि हम केवल ढोंग करें तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे बनते। अतः यदि आप अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते तो आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि जब तक हम लक्ष्य तक न पहुंच जाएं तब तक हमें यह अभ्यास करते रहना पड़ेगा। भंते, अच्छा, हाँ, आप ज्ञान एवं अज्ञान के बीच का अंतर जानते हैं। यह जानते हुए कि आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है, अपना ध्यान कर्मस्थान पर केंद्रित करें तथा फिर वहीं टिकाए रखें। यदि आप इस जागरूकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो क्या तब भी आपको मृत्यु के क्षण के विषय में भयभीत एवं चिंतित होने की आवश्यकता है? नहीं बनते, यदि आप इस जागरूकता के अभाव में मृत्यु प्राप्त करते हैं तो मुझे बताइए कि क्या होता है। मैं चार अपाय लोकों में से किसी एक में पुनर्जन्म लूंगा। बनते, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं बनते, क्या आप वास्तव में वहां नहीं जाना चाहते या मुझसे असत्य बोल रहे हैं? बनते, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा असत्यवादिता में पतन हो गया है। मैं ऐसे मार्ग पर चल रहा हूं जो सीधे अपाय लोकों की ओर ले जाता है। जब मैं कहता हूं कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता तो मैं केवल खोखले शब्दों का प्रयोग करता हूं तथा अभी भी पतन की ओर अग्रणी व्यापक राजमार्ग पर ही हूं। बहुत अच्छा, आपने समझ लिया है। यदि आप स्वयं जानते हैं कि आप में कुछ समझ आई या नहीं तब आप सही मार्ग पर हैं। जब आप जानते हैं कि अभी आपने नहीं समझा है तो आपने समझ लिया है। किंतु यदि आपको लगता है कि आपने समझ लिया है यद्यपि आपने कुछ भी नहीं समझा है तो आप में कुछ भी समझ प्राप्त करने की थोड़ी सी भी आशा नहीं है। जब वह आलसी होता है तो समझदार व्यक्ति यह जानता है कि वह आलसी है। जब वह निष्फल होता है तो वह जानता है कि वह निष्फल है। यदि आप स्वयं को उचित परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं तब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप स्वयं को सुधारने में सक्षम होते हैं। यह मानकर कि अब आपको और अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि वास्तव में है, क्या आप अभी भी इस तरह से सोचते हैं कि आप अपाय लोकों में नहीं जाना चाहते? अब यह सब जो मैं ध्यान लगा रहा हूं तो मेरा अच्छा ही होगा, आखिरकार उसके लिए बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं पड़ती? नहीं बनते, मैं जो गलत है उसको सही और जो सही है उसको गलत नहीं मानता। यदि आप दृढ़तापूर्वक अपना ध्यान कर्मस्थान पर केंद्रित कर लें तथा मन एवं पदार्थ के प्रति जागरूक हो जाएं, तो आप समझ का सूझबूझ का अभ्यास करते हैं। यदि आप में कोई जागरूकता नहीं है तो आप अज्ञानता में जी रहे हैं। यदि आप अज्ञानता से भरपूर चित्त के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आप अपाय लोकों में जाएंगे, भले ही आप उपोषित शिक्षा पदों का पालन करते हो। यहां हम बता दें कि उपोषित शील के अंतर्गत 8 शिक्षा पद आते हैं। किसी भी प्राणी की हत्या करने से विरक्ति, पाली में विरति अर्थात परित्याग या परहेज या न करना, जो वस्तु न दी गई हो उसे लेने से विरति, यौन दुराचार से विरति, असत्य वाणी से विरति, मादक पेय एवं पदार्थों के सेवन से विरति, विकाल भोजन अर्थात दोपहर के बाद ठोस आहार के सेवन से विरति, नृत्य गायन संगीत एवं अश्लील प्रदर्शनों से, माला इत्र और अंजन से तथा शरीर को सुशोभित करने एवं सजाने वाली वस्तुओं से विरति। तथा आठवां शिक्षा पद है उच्च और विलासितापूर्ण शयनासनों से विरति। तो सयादा ने आगे पूछा, मुझे बताइए कि यदि आप मृत्यु के समय पगोडा के पास अथवा किसी बोधि वृक्ष के नीचे हों तो आपका पुनर्जन्म कहाँ होगा? हम यहाँ बता दें कि पगोडा एक गुंबद के आकार का धार्मिक स्मारक होता है। सामान्यतया इसमें किसी बुद्ध के या किसी विशेष सम्मानित भिक्षु के अवशेष होते हैं अथवा इसमें कोई बुद्ध की प्रतिमा, पाली ग्रंथ या अन्य पवित्र वस्तुएं हो सकती हैं। अधिकांश पगोडा ठोस संरचनाएं होती हैं और वे बुद्ध के प्रतीक हैं। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, जिसके नीचे बुद्ध ने बुद्धत्व, बोधि या जागृति प्राप्त की थी। तो शिष्य ने उत्तर दिया, भंते मैं कहीं भी रहूं, यदि मैं मृत्यु के समय अपना चित्त एकाग्र नहीं कर सकता तो मैं नीचे ही जाऊंगा। भिक्षुओं के बारे में क्या सोचते हैं? यदि मैं यह सोचूं कि आहा, मेरा पुण्य भंडार इतना महान है, उन गृहस्थ लोगों के भंडार की तुलना में अत्यंत अधिक है, और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहूँ, यदि मेरी मृत्यु होती है तो मेरा पुनर्जन्म कहाँ होगा? हम भिक्षुओं के विषय में कुछ कहने का साहस नहीं करते बनते। आपको भिक्षुओं के विषय में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक उदाहरण के रूप में मुझे ले लीजिए। बनते हम आपके विषय में कुछ कहने का साहस और भी कम करेंगे। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मेरा मन किसी भी आलंबन अर्थात विषय वस्तु पर नहीं टिकता और मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा मेरे शिष्य? बनते मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी समय होगा जब आप इस स्थान या यानि कर्मस्थान के प्रति जागरूक न हों। किंतु यदि इस जागरूकता के बिना ही मेरी मृत्यु हो जाए, यदि वह मैं हूं तो मेरा अपाय लोकों में पतन होगा। बनते जो कोई भी हो, यदि मृत्यु के क्षण जागरूकता नहीं है तो परिणाम नरक में पुनर्जन्म होगा। अतः आप अपनी सती को प्रतिष्ठापित कीजिए ताकि आप इस लघु स्थान को कभी भी न भूलें। इस जागरूकता के कारण पूरी समझ प्राप्त करने के पश्चात यदि मैं नरक में पुनर्जन्म लेना चाहूं तो क्या नरक में जाने की मेरी कोई संभावना हो सकती है? इस प्रकार की इच्छा नहीं पूरी हो सकती। बनते जो समझना चाहिए यदि हम उसे नहीं समझते फिर भी निर्वाण के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं तो क्या हम वह पा लेंगे? नहीं बनते। हम चाहे कितनी भी देर तक निर्वाण के लिए प्रार्थना करते रहें, हम नीचे ही जाएंगे। अज्ञानता चार अपाय लोकों की ओर ले जाती है। किंतु यदि आप आनापान की साधना करने लगें तो आप शनै शनै निर्वाण प्राप्ति की दिशा में विकसित होंगे, जिसकी कि आपको आकांक्षा है। अतः इस छोटे से स्थान पर अपना अधिक ध्यान लगाइए जिससे कि वह विचलित न हो। क्या यह संभव नहीं है कि जब आप मेरे सामने बैठे हुए हैं आप अपना ध्यान इस छोटे से स्थान पर स्थिर कर दें? ऐसा संभव है बनते? क्या इसे खड़े रहते हुए तथा चलते समय किया जा सकता है? हाँ बनते। क्या आप खाते पीते या काम करते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं? यह संभव है बनते। जब आप अकेले में हों तो क्या आप आनापान का अभ्यास कर सकते हैं? हाँ बनते। या जब आप किसी भीड़ में हों तब भी इस जागरूकता को बनाए रखना संभव है? बनते यदि आप इस स्थान पर अपना ध्यान सदैव बनाए रखें तो क्या आप थक जाएंगे? नहीं बनते। यह थकाऊ नहीं है, क्या आपको इसका कोई मूल्य देना पड़ता है? नहीं बनते, इसमें कोई खर्च नहीं है। क्या आपके काम में कोई खलल पड़ता या बाधा आती है? नहीं बनते, ऐसा नहीं है। आप अपने काम में अधिक दक्ष कब होते हैं? जब आप अपने मन को इधर उधर भटकने देते हैं, अथवा जब आप अपने ध्यान को इस स्थान पर केंद्रित रखते हैं। उतना ही समय लगता है बनते। अधिक दक्ष कौन होता है? वह जिसका मन भटकता रहता है, अथवा वह जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है। जो कर्मस्थान पर अपना ध्यान बनाए रखता है, वह अपना काम करता है और साथ ही साथ निर्वाण की प्राप्ति के लिए कार्यरत होता है। कोई 1,00,000 कमा सकता है, किंतु वह जो अपना काम करता है तथा साथ ही साथ सजगता का अभ्यास करता है, उसका दुगुना कमाता है। अब से आप 2,00,000 अर्जित करेंगे, किंतु मुझे बताइए कि जब हम अपना मन सुदृढ़ एवं शांत करते हैं, तो क्या हमारा पुरस्कार मात्र इतना ही होगा? नहीं बनते। जब मन निर्मल होता है, तब वह स्थिर, सुदृढ़ एवं सबल हो जाता है। यहाँ सारी गृहिणियाँ खाना पकाने में निश्चित रूप से अनुभवी हैं। कभी कभी बहुत थके होने पर भी आपको खाना पकाना पड़ता है। हाँ बनते, कई बार हम केवल आग को घूरते रहते हैं और थकान के कारण ऊँघते हैं, तब कभी कभी चावल जल जाता है बनते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ध्यान काम पर नहीं होता बनते। कल ही मैं एक दृश्य के विषय में सोच रही थी, जिसे मैंने एक नाटक में देखा था, और मैंने चावल जला दिया। बनते, यदि मेरा मन न भटकता तो मैं अपना काम और अधिक शीघ्रता से करने में सक्षम होती तथा मेरा भोजन जला नहीं होता। यदि आप अधपका चावल खाएं तो क्या होगा? कुछ लोगों का पेट खराब हो जाता है बनते। यदि आप बेतरतीब ढंग से खाना बनाती हैं, तो आप धीमी गति से करती हैं, आसानी से थक जाती हैं और भोजन ठीक नहीं बनता, आग बुझ जाती है और फिर आपको उसे नए सिरे से सुलगाना पड़ता है। चावल का पानी ठंडा हो जाता है और आपको उसे फिर से उबालना पड़ता है। सचेत रहे बिना कुछ भी अच्छा नहीं होता। जब हम अपनी सजगता सुधारते हैं, तो कई अन्य चीज़ों में सुधार होता है। मैं आपको केवल वही बता रहा हूँ जो बुद्ध ने बताया है, किंतु उन्होंने जो भी सिखाया, वह सब कुछ वास्तव में मैं आपको नहीं बता सकता। इस साधना से कई और अधिक लाभ होते हैं। बुद्ध की शिक्षा संपूर्ण है और उसमें कोई दोष नहीं है। धम्म के प्रत्येक पहलू को सिखाना असंभव है, किंतु यदि आप अपना ध्यान कर्मस्थान पर केंद्रित किए रखें तथा पल पल उससे अवगत रहें, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बुद्ध ने यह अवश्य सिखाया तथा प्राचीन काल में समझदार लोग इस साधना के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। तथापि बुद्ध ने अनेक तथ्य आत्मसात किए थे जो इसमें सम्मिलित नहीं हैं, किंतु यदि आप कर्मस्थान पर आश्वास एवं प्रश्वास से अवगत रहें, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप वास्तव में आनंदित होंगे। मैं केवल इस छोटे से स्थान के विषय में ही बात कर रहा हूं। आप शांति के लिए ध्यान अर्थात समथ, पाली में समथ, और अंतर्दृष्टि ध्यान अर्थात विपश्यना, पाली में विपश्यना के विषय में तथा वे कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके विषय में सभी सिद्धांतों को जानते हैं। हाँ, तो समथ होती है और विपश्यना होती है, किंतु बुद्ध ने कहा कि आपको एक विधि में स्वयं को अच्छी तरह स्थापित करना है। यदि आप एक ही की साधना करते हैं तो एक को प्राप्त करते हैं, यदि आप एक की साधना करते हैं तो दो को प्राप्त करते हैं, यदि आप एक की साधना करते हैं तो तीन को प्राप्त करते हैं, किंतु ये तो केवल शब्द हैं। प्राचीन काल के समझदार लोगों के प्रयास के समान प्रयास के साथ हमें अभ्यास करना है। जब हम धम्म की शिक्षा देते हैं, तो स्थापित क्रम के अनुसार हमें सुत्त, अभिधम तथा विनय के बीच भेद करना पड़ता है। किंतु आप शिक्षा को वास्तव में समझाने में केवल तभी सक्षम होंगे जबकि आपने बुद्ध के महान शिष्यों के प्रयास तथा उनकी साधना के समान साधना की हो। यद्यपि मैंने तकनीक को ठीक तरह से आपको स्पष्ट कर दिया है, किंतु यह संभव है कि आप में से कुछ लोग इसके प्रति अवरुद्ध हों और इसे न समझें। यदि मैं आपसे उस आवास के विषय में पूछूं जिसमें आप रहते हैं, तो आप सही ढंग से मेरे लिए उसका वर्णन करेंगे। यदि मैं आपके आवास के विषय में सोच विचार करूं, तो क्या मैं वह जैसा है उसकी वैसी ही कल्पना करने में सक्षम हो सकता हूं? नहीं बनते। यदि मैं पूरे दिन और पूरी रात यहां तक कि बिना सोए सोच विचार करूं, तो क्या मैं आपके आवास के विषय में जान पाऊंगा? नहीं बनते। अच्छा, तो मुझे बताइए कि मैं स्वयं कैसे जान सकता हूं कि आपका घर कैसा दिखाई देता है? यदि आप स्वयं मेरे घर आते हैं, तो भले ही कोई एक भी शब्द आपसे न कहे, उसके बारे में आप तुरंत सब कुछ जान जाएंगे बनते। अतः आप भी इस प्रकार से आगे बढ़िए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। जब आप वहां पहुंच जाएंगे, तो आप जान जाएंगे, वाह, यही है। तब क्या आप अभ्यास को टालना जारी रखेंगे? नहीं, निसंदेह नहीं। आप यहीं और अभी धम्म प्राप्त कर सकते हैं। यह सब समझते हुए अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। आपने मुझे अभी बताया कि ध्यान लगाने से आपको थकावट नहीं होती। आपने कहा कि इसमें कोई खर्च नहीं है, यह आपके काम को बाधित नहीं करता तथा आप यह अभ्यास अकेले में एवं अपने परिवार के साथ भी करने में सक्षम हैं। क्या आप साधना न करने के लिए अभी भी बहाने ढूंढ सकते हैं, अथवा यहाँ तक कि बहाना ढूंढने का प्रयास किए बिना भी जिस प्रकार जीते रहे हैं वैसे ही जीते रहेंगे? अधिकांशतः हम साधारण ढंग से बस समय काटते रहते हैं बनते। जो लोग इस साधना को करने का बीड़ा उठाते हैं, उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। अतः अपना ध्यान केंद्रित रखें और आपका भोजन शीघ्र ही पक जाएगा। चावल नहीं जलेगा और कोई लकड़ी व्यर्थ नहीं होगी। आपका समूचा जीवन सुधर जाएगा और समय बस उड़ने लगेगा। एक समुचित आचरण होता है और एक समुचित समझ होती है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। अपने अनेक कर्तव्यों का निर्वहन तथा बुद्ध की शिक्षा के प्रसार एवं उसके समर्थन हेतु चार आवश्यक वस्तुएं अर्थात चतुर प्रत्यय देना ही समुचित आचरण है। प्रशिक्षण के यही दो आयाम हैं तथा आपको इन दोनों में एक ही साथ प्रशिक्षित होना होगा। जब आप भिक्षु संघ के लिए चतुर प्रत्यय, पाली में चतुपच्चय अर्थात भिक्षुओं की चार आवश्यक वस्तुएं तैयार करते हैं तथा देते हैं, तो क्या यह संभव नहीं है कि आप अपनी श्वास के प्रति भी जागरूक रहें? ऐसा संभव है बनते। इन दो विषयों में से किसके अंतर्गत झाड़ू लगाना आता है? झाड़ू लगाना समुचित आचरण का भाग है बनते। जब आप झाड़ू लगाते हैं, तो क्या आप अपना ध्यान कर्मस्थान पर नहीं रख सकते? हम रख सकते हैं बनते। इन दो प्रशिक्षणों में से किसके अंतर्गत अपने माता पिता की सेवा करना आता है? जिनके द्वारा दिए गए प्रेम, करुणा और पोषण के कारण आप उनके हार्दिक रूप से आभारी हैं, वह सही आचरण है बनते। जब आप अपने माता पिता की सेवा एवं सहायता कर रहे होते हैं, यदि आप अपना ध्यान कर्मस्थान पर केंद्रित रखें, तो आप क्या प्राप्त करते हैं? हम अपनी समझ विकसित करते हैं बनते। अतः आप समुचित आचरण एवं समुचित समझ दोनों में स्वयं को एक साथ प्रशिक्षित कर सकते हैं। कभी कभी आप कह सकते हैं कि चाहते हुए भी आप ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा नहीं कर सकते। क्या आपके साथ ऐसा होता है बनते? युवा लोग प्रायः इस प्रकार सोचते हैं तथा ध्यान लगाना टाल देते हैं। वयस्क लोग क्या करते हैं? वे प्रायः कहते हैं कि वे ध्यान नहीं लगा सकते क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी है। वंते, अपने कर्तव्यों का पालन करना नैतिक आचरण का एक भाग है। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपका आचरण समुचित नहीं है। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होते हैं, जैसे अपने बच्चों को अनुशासित करते समय, उस समय भी आप कर्मस्थान की जागरूकता में स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? आपके पास नैतिक आचरण और समझ दोनों में अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए अब यह समय है। कोई आराम के बिना अपने हितकारियों, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों तथा भिक्षु संघ का सम्मान कीजिए। अब से प्रारंभ कर बिना विराम के, जैसा कि प्राचीन काल में समझदार लोगों ने किया था, दृढ़ प्रयास के साथ वैसा ही काम कीजिए। बुद्ध के समझदार शिष्यों की तरह आपका संकल्प भी पूरा होगा।